लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे रोगियों की प्रेरिताई हेतु प्रार्थना करते हैं। हमारी याचना है कि रोगियों को अंतमलन देने वाला संस्कार उनके लिए, उनके परिवारों के प्रिय लोगों के लिए तथा सबके लिए ईश्वर की शक्ति, करुणा और आशा का एक दृश्यमान संकेत बन जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े महागिरजाघर संत पेत्रुस महागिरजाघर पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, हम जयंती वर्ष 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के इस क्रम में हमने जयंती को विभिन्न रूपों में समझने का प्रयास किया है। हमने कार्तिक कलीसिया में इसकी शुरुआत पर भी प्रकाश डाला है। अब हम रोम शहर में प्रमुख तीर्थ स्थलों पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जयंती वर्ष में दुनिया भर के तीर्थयात्री रोम आकर उन तीर्थ स्थलों का दर्शन कर अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम संत पेत्रुस महागिरजाघर पर प्रकाश डालेंगे, जो कार्तिक कलीसिया का सबसे पहला महागिरजाघर है, अर्थात पोप का गिरजाघर, जहां कार्तिक कलीसिया के प्रथम पोप प्रेरित संत पेत्रुस की कब्र स्थित है। तो लीजिए, प्रस्तुत है संत पेत्रुस महागिरजाघर पर एक चर्चा, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। कार्तिक कलीसिया का हृदय संत पेत्रुस की कब्र पर केंद्रित है, जिसने उनकी मृत्यु के तुरंत बाद से ही तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है। पोप पियूस 12वें और उनके बाद पोप पॉल 6वें द्वारा पुरातात्विक अनुसंधान के बाद यह ठोस साक्ष्य बन गया है। तो आइए प्रोफेसर विंचेंसो बियाकी निकोलाई के साथ इन खोजों की घटनाओं पर नजर डालें, जो पुरातत्व के इतिहास में सबसे सनसनीखेज खोजों में से एक है। महागिरजाघर के गुंबद से एक अदृश्य धागा नीचे उतरता है और प्रकाश से होकर भूमिगत अंधकार में डूब जाता है, जो सदियों के इतिहास एवं विभिन्न निर्माण चरणों को अपने में समेटे हुए है। सबसे नीचे खाली जमीन पर संत पेत्रुस को दफनाया गया था। संत पेत्रुस को उस क्रूस से नीचे उतारा गया था, जिस पर वे कुछ ही दूर पर नीरो के सर्कस के क्षेत्र में मर गए थे। उसके बाद उन्हें वैटिकन क्षेत्र में एक कब्रिस्तान में उनके जैसे कई गुमनाम और गरीब लोगों के बीच दफना दिया गया था। इसके बावजूद उनकी यादें लोगों के दिलों में मजबूत रहीं। इस प्रकार यह स्थान तुरंत तीर्थयात्रियों के लिए एक गंतव्य स्थान बन गया। समय बीतने के साथ उसी गड्ढे पर एक के बाद एक राशि स्मारकों की वृद्धि हुई। कॉन्स्टेंटाइन और ग्रेगोरी द ग्रेट के स्मारक बने और फिर 9वीं शताब्दी से यीशु की भित्ति चित्र के साथ पोप कैलिस्टस द्वितीय की वेदी और अंत में पोप क्लेमेंटिन 8वें की वेदी बनी। बाद में कब्र के चारों ओर महागिरजाघर का निर्माण किया गया, जो ईसाई जगत में एक शहीद की कब्र पर सीधे बनाई गई पौत्र इमारत का नमूना है। इसे संत पेत्रुस की कब्र के ऊपर बनाया गया है, जो रोम की कलीसिया के पहले धर्माध्यक्ष थे। यह एक जटिल कहानी है, जो पेत्रुस की कब्र के इर्द गिर्द घूमती है। समय के साथ स्मृति बनी रही और तब यह आस्था में बदल गई, जब 1939 में पोप पियूस 12वें ने पुरातात्विक खुदाई करने का फैसला किया, जो युद्ध के कारण और समय की परिस्थितियों के कारण मुश्किल था। पेत्रुस की कब्र को पहचान लिया गया। 23 दिसंबर 1950 को क्रिसमस रेडियो संदेश के दौरान पौत्र वर्ष के अंत में पोप ने घोषणा करते हुए कहा, कब्र मिल गई है, लेकिन प्रश्न था क्या संत पेत्रुस की कब्र वास्तव में मिल गई थी? अध्ययन का अंतिम निष्कर्ष इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से हाँ में देता है। प्रेरितों के राजकुमार की कब्र मिल गई है। अब आइए हम ख्रिस्त पुरातत्व के परमतम पीठ संस्थान में ख्रिस्त कब्रस्थानों के स्थलाकृति के प्रोफेसर विंचेंसो फियोकी निकोलाई के साथ पुरातत्व के इतिहास में सबसे सनसनीखेज खोजों की घटनाओं पर नजर डालें। प्रोफेसर कहते हैं, पेत्रुस की कब्र तत्वों की एक पूरी श्रृंखला के आधार पर प्रदर्शित होती है, क्योंकि 16वीं शताब्दी के अंत में वेदी के ठीक नीचे वेदी के साथ संरेखित एक मध्ययुगीन वेदी पाई गई है और इसलिए गुंबद के नीचे फिर एक सुंदर संगमरमर का स्मारक है जो एक ताबूत है जिसे कॉन्स्टेंटाइन बनाना चाहते थे, जिसमें एक कब्र का संकेत देने वाला शिलालेख भी है जिसे अभी भी नीचे पाया जा सकता है। यह कब्र एक कब्रस्थान की पृष्ठभूमि पर पाई गई है जो अन्य कब्रों के साथ पहली शताब्दी के अंतिम दशक और द्वितीय शताब्दी के शुरुआत के बीच की तिथि की है। ये तत्व और अन्य आधार जैसे भित्ति चित्र पुष्टि करती हैं कि यह प्रेरित पेत्रुस की कब्र है। भित्ति चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भक्तिमय गतिविधियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। ये रोम समुदाय के पहले विश्वासों की गतिविधियों को दर्शाती है जिसको कलीसिया के इतिहास में कैसरिया के यूसेबियुस द्वारा रिपोर्ट किया गया था। यह गायुस के बारे बताता है जो रोम में पेत्रुस और पौलुस की कब्रों की उपस्थिति की घोषणा करते हैं। यह स्पष्ट स्थलाकृतिक संकेत है जो लिबर पोंटिफिकालिस में भी प्रकट होती है, जो पेत्रुस के लिए शाही युग से प्रसिद्ध माने जाने वाले स्मारकों को याद करने के अलावा रोम स्थित विया ऑरेलिया और विया ट्रायनफाले के बीच दफन स्थान को भी याद दिलाता है। भित्ति चित्र लाल प्लास्टर वाले प्रसिद्ध लाल दीवार पर है। एक अलग टुकड़े पर हम एक प्रसिद्ध खंडित भित्ति चित्र को पढ़ सकते हैं जिसमें पेत्रुस और अगली पंक्ति में ग्रीक में कुछ लिखा हुआ है। इस अंश को पढ़ने से कई व्याख्याएं सामने आई हैं। पुरातत्व वेदा याद करते हैं कि सबसे दिलचस्प व्याख्या प्रोफेसर ग्वादूची द्वारा की गई थी, पेत्रुस एनी अर्थात पीटर यहाँ है या पीटर इसके अंदर है। यह कब्र की ओर नहीं बल्कि कॉन्स्टेंटाइन के समय में बने एक बॉक्स में हड्डियों की ओर इशारा करता है। फियोकी निकोलाई बतलाते हैं कि दूसरी व्याख्या के अनुसार इसे पेत्रुस शांति में के रूप में पढ़ा जाता है। जैसा कि पोप पियूस 12वें ने कहा है कि पेत्रुस की कब्र की पहचान से संबंधित पहला प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न आता है, क्या पेत्रुस की हड्डियां मिल गई हैं? इस प्रकार पुरातत्व के इतिहास में सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक की शुरुआत हुई और उसकी मुख्य पात्र एक महिला थी जो 20वीं सदी की शुरुआत में पैदा हुई थी, फ्लोरेंटाइन पुरातत्वविद और पुरालेखक मार्गरेटा ग्वादूची, जो भित्ति चित्रों एवं विशेष रूप से पेत्रुस से संबंधित भित्ति चित्रों को समझने के लिए जिम्मेदार थी। पोप पियूस 12वें द्वारा समर्थित खुदाई में संत पेत्रुस की कब्र तो मिली लेकिन गायुस के एडिक्यूल के नीचे कोई हड्डी नहीं मिली। एक बॉक्स मिला जिसे भित्ति चित्र की दीवार पर खोदे गए एक ताख में रखा गया था जो किसी अज्ञात समय में बनाया गया था, पर यह कॉन्स्टेंटाइन से पहले का है जिसने इस बॉक्स को कीमती लाल पोरफिरी से सजे एक बड़े संगमरमर के ताबूत में बंद कर दिया था जिससे अभी भी क्लेमेंटीन चैपल में देखा जा सकता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने संत पेत्रुस महागिरजा घर में कैथोलिक कलीसिया के प्रथम पोप संत पेत्रुस की कब्र के बारे चर्चा सुनी। हम रोम के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर चर्चा जारी रखेंगे और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
I'm the one. आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका वर्तमान से उपजता भविष्य। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, एक दंपति के लिए माता पिता बनना जीवन का सबसे पुरस्कृत व परिपूर्ण कर देने वाला अनुभव है। माता पिता बनने के साथ संतान के पालन पोषण का दायित्व कंधे पर आ जाता है, और जब से सृष्टि हुई है तब से आज तक कोई ऐसा माता पिता नहीं रहा जिसने अपने बच्चों की सही देखभाल न की हो। यह गुण स्वतः माता पिता में आ जाता है। परिवार में बच्चों के लिए अपने माता पिता एक मॉडल, एक आदर्श होते हैं। अनायास ही बच्चे वही सीखते और करते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। अगर पिता घर में अपनी बीबी और बच्चों से ही मतलब रखे और परिवार के अन्य सदस्यों की परवाह न करे, अगर माता बूढ़े दादा दादी का ख्याल न रखे, उनकी टीका टिप्पणी करे, उनकी शिकायत करे, बूढ़े माता पिता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को न निभाए और परिवार के संस्कारों की अवहेलना करे, और वो आशा करे कि उनके बेटे संस्कारी बने, बुढ़ापे में उनका सहारा बने, यह तो वैसे ही होगा जैसे बबूल के पेड़ से मीठे आम की आशा करना। ऐसे माता पिता को अपने बच्चों के खातिर खुद के व्यवहार में बदलाव लाना ही होगा, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य उपजता है। आशा है यह नाटिका आपके सोच में थोड़ा बदलाव लाएगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है माइकल होजेस की लिखी नाटिका वर्तमान से उपजता भविष्य।
आप कहाँ बाजार जा रहे हैं?
हाँ, क्यों?
तो ऐसा करना, पीपल चक्की से आटा भी लेते आना और बनिए से राशन भी लेते आना।
लक्ष्मी, तुम भी एक ही हो। अरे जब बाजार से इतना कुछ लाना हो तो पहले ही बता दिया करो, ताकि एक एक काम रोज के निपटा सकूं। सब काम एक साथ ही बता देती हो तुम।
अरे मैं 3-4 दिन से रोज राशन मंगवाने का सोच रही थी, लेकिन घर के कामों में भूल भूल जाती थी।
तो अब से मान लो कि तुम बूढ़ी होने लगी हो, तुम्हारी याददाश्त कम होने लगी है।
अच्छा, मैं बूढ़ी होंगी तो क्या आप जवान ही रहोगे? आप बूढ़े नहीं होंगे?
होंगा लक्ष्मी, होंगा। मैं भी बूढ़ा होंगा, लेकिन तुम्हारे बाद।
अरे रहने दो, बालों को रंग कर कोई जवान नहीं बन जाता, चेहरे की झुर्रियां राज खोल ही देती हैं।
अब आजकल के जमाने के हिसाब से तो रहना ही पड़ता है, वरना लोग एकदम ही बूढ़ा समझने लगेंगे। फिर अभी तो मेरे रिटायरमेंट में 12 साल बाकी।
हाँ, तब जाकर मेरा अकेलापन दूर होगा। आपकी ड्यूटी जाने के बाद तो मैं यहाँ बहुत अकेली हो जाती हूँ।
क्या करें लक्ष्मी, हमारी किस्मत में ही औलाद होते हुए भी बे औलाद होना ही जो लिखा है।
अब अपनी बेटी स्वाति का मान सकते हैं कि उसे तो शादी करके जाना ही था, सो वह चली गई। लेकिन हमारा बेटा ललित भी हमें छोड़कर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर चला गया है।
उसे भी ना जाने क्या सूझी। अगर बहू हमसे अलग ही रहना चाहती थी तो उसे लेकर इसी शहर में कहीं अलग रह लेता, लेकिन वो तो शहर छोड़कर ही चला गया है।
यह तो सब बहू की सिखाई पढ़ाई है।
ना जाने उसे यहाँ किस बात की कमी थी, या हमने उस पर कौन सी बंदिश लगाई थी। उसे तो हम बेटी की तरह रखते थे।
ना जाने औरत और एक माँ होकर भी वे प्यार और ममता को क्यों नहीं समझ सकी।
शायद कुछ औरतें और माएं ऐसी भी होती हैं, लोग जिनका बुरा उदाहरण दे सकें।
मुझे माफ कर देना, ऐसी एक औरत और एक माँ मैं भी रह चुकी हूँ। सालों पहले मैंने भी आपको आपकी माँ से दूर कर दिया था, शायद यह उसी कर्म की सजा है।
मैंने तो अपनी गृहस्थी बचाने के लिए तुम्हें उसी समय माफ कर दिया था लक्ष्मी। अब तो लगता है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने अपने अतीत में ही अपने इस वर्तमान की नींव डाल ली थी। मेरा वही भविष्य आज मेरा वर्तमान बन गया है। अब तो मैं भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि कोई भी बहू अपने पति को अपनी सास से दूर करने का कारण न बने।
ललित को हमसे दूर ही रहना तो रहे, लेकिन कम से कम अपनी खैरियत की खबर तो देता रहे, मगर उससे तो वो भी नहीं होता।
साल 6 महीने में कभी एक आध बार फोन कर लेता है बस।
और यहाँ आने का कहो तो अगली छुट्टी में आएंगे केक हटाल देता है। और अब तो साल भर से उसका कोई फोन भी नहीं आया है, और हम फोन लगाते हैं तो कोई उठाता ही नहीं।
ये सब उस सौम्या की ही कारस्तानी है, जो अब हम अपने बेटे की आवाज सुनने को भी तरस रहे हैं।
बेटे से अच्छा तो जवाई है हमारा, जो बेटी के साथ साथ हमारा हालचाल पूछता रहता है और गाहे बगाहे हमारे यहाँ आता भी रहता है।
शायद हमारे समाज में आजकल सास ससुर की देखभाल की जिम्मेदारी दामादों ने उठा रखी है।
शायद तुम ठीक कहती हो लक्ष्मी, ललित भी उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ललित इस कदर स्वार्थी हो जाएगा। उसने तो कभी हमारी उम्र के बारे में भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा।
आपके तो और भी भाई थे जिन्होंने आपके माँ बाप को संभाल लिया था, लेकिन हमारा तो एक ही बेटा है।
लगता है अब वह केवल हमारी चिता को ही आग लगाने आएगा बस, और वह भी दुनिया को दिखाने के लिए।
आप दिल क्यों छोटा करते हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन हमारा बेटा जरूर लौट कर आएगा।
आखिरी समय में लौट कर आना भी क्या उसका लौटना होगा? उसकी जरूरत तो अभी है हमें। बाजार हाट हो, कोई जरूरी काम हो, नौकरी के साथ साथ सब मुझे ही करने पड़ते हैं।
आप क्यों इतने निराश हो रहे हैं? ललित को एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा और लौट कर वापस आएगा।
शायद वह दिन कभी नहीं आएगा। तुम्हारी प्रतीक्षा जीवन भर की प्रतीक्षा बनकर रह जाएगी। अब छोड़ो ये सब, राशन की लिस्ट और थैला थैली दो, मैं बाजार होकर आता हूँ।
अभी लाती हूँ। अरे ललित बेटा, तू आ जा। कितने सालों के बाद तूने माँ को चेहरा दिखाया है। अब याद आई है माँ की? आओ बहू, आओ। अरे सुनते हो? देखो तो कौन आया है।
जीते रहो बेटा, जीती रहो बहू। अरे ये चिंटू तो बहुत बड़ा हो गया है। आ बेटा, दादा के पास आ, आ जा बैठ।
कैसे हो अम्मा? बाबूजी आप कैसे हैं?
हम दोनों तो ठीक हैं। तुम कैसी हो बहू?
ठीक हूँ अम्मा।
हाँ बेटा ललित, बहुत साल बाद आना हुआ। कितने दिनों के लिए आए हो?
क्या आप भी आते ही जाने की बात कर रहे हैं?
हम हमेशा के लिए यहाँ रहने आए हैं अम्मा।
हमेशा के लिए? सुना आपने ललित क्या कह रहा है?
हाँ बाबूजी, सौम्या कुछ प्रायश्चित करना चाहती है।
कैसा प्रायश्चित बेटा?
अम्मा, बाबूजी, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने इनको आप लोगों से दूर किया, लेकिन अब मैं अपने उस पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। और यह भी चाहती हूँ कि कल को मेरा यह बेटा अपने बाप का इतिहास ना दोहराए।
मुझे खुशी हुई जानकर कि अपने बेटे को बड़ा होता देखकर तुमने ममता के महत्व को समझा है।
हाँ बेटी,
मैं जान चुकी हूँ कि हमारे वर्तमान से ही हमारा भविष्य उपजता है। यदि हम वर्तमान में अच्छे काम करेंगे तो हमारा भविष्य सुखमय होगा।
वाह बेटी,
सच कहा सौम्या। बुरे काम करते हुए हमें कोई देखे या ना देखे, लेकिन ईश्वर हमें जरूर देखता है और हमें हमारे कर्मों का फल देता है।
और ललित, तुम्हारी नौकरी?
मैंने यही ट्रांसफर करवा लिया है, क्योंकि अब आप लोगों को हमारी ज्यादा ही जरूरत होगी। फिर डाली पेड़ से लगी होने पर ही हरी रहती है, पेड़ से अलग कर देने पर वह सूख जाती है।
वाह, सही कहा बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ।
आज मेरी प्रतीक्षा भी पूरी हुई।
वर्तमान से बचता भविष्य, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे कैथरीन फ्रांसिस, दिव्या शुल्या, प्रिंस फर्नांडिस और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।